الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام سبق عام و خبریں لیے حاضر ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بات درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں ایک نیوز پڑھ رہا تھا آج کے پروگرام کے تعلق سے جو مجھے ملی تھی، اس نیوز میں جو بات آپ سے مجھے ڈسکس کرنی ہے وہ دو دوستوں کی آپس کی گفتگو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے کچھ موضوعات پر بات چیت کر رہے تھے، ملک کی حالات، واقعات وغیرہ وغیرہ، جو آج کل ہمارے یہاں ٹرینڈ چلتا ہے، لوگ عموماً کچھ اسی طرح کی گفتگو آپس میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے کہا کہ یار میں تو بس باہر جانے کا راستہ تلاش کر رہا ہوں کہ میں کسی صورت ملک سے باہر چلا جاؤں، یعنی کہ وہ تنگ تھا وہ یہاں اپنے ملک میں رہنے کے تعلق سے، اور کوشش کرتا ہوں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پاسپورٹ بھی بن جائے وغیرہ وغیرہ، جو آج کل اسپیشلی نوجوانوں کی جو اس وقت تھاٹ ہے اس کے تعلق سے یہ ڈسکس ہو رہی تھی۔ تو اچھا مجھے بھی اسی طرح وہ کنوینس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس طرح کی کوئی معاش کے تلاش کے لیے، روزگار وغیرہ کے لیے جانا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ میں تھوڑا مزید معلومات کرنے کے لیے تھوڑی مجھے بے چینی ہوئی کہ آخر معلومات دوں کہ یہ آخر میٹر ہے کیا۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ ایک بڑی تعداد ہے کہ جو باہر جانے کے تعلق سے باتیں کر رہی ہے، اخراجات پورے کرنے کے تعلق سے، اپنے غربت سے نکلنے کے تعلق سے، اپنی معاشی پریشانیوں کے نکلنے کے تعلق سے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا اب بات کچھ اسی طرح کی جب سامنے آئی تو اب اس کی تو بہت بڑی تعداد نکل آئی، اور ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ لوگوں میں ایک عجیب سی نا امیدی اور عجیب سی وہ بے چینی کہ رہنا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے، مسئلہ وہ ہے، فلاں ہے، تو جناب نکل جائیں۔ تو نکل جانے کے تعلق سے پھر وہ جو راستے اختیار کیے جاتے ہیں وہ راستے پھر اختیار کرنے پر، اب یہ اس کو اپنی طرف سے آپ کو کچھ ڈسکس کر رہا ہوں، پھر وہ راستے اختیار کرنا، پھر قرضہ لینا، پھر اس کو دینا، اس کو دینا، تو یہ میرا آج کا موضوع وہ نہیں ہے۔ جو لوگ وہ انلیگل جو چلے جاتے ہیں وہ تو ڈیفینیٹ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شاید ایسا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے نوجوانوں میں اسپیشلی، کہ جو باہر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید باہر جائیں گے تو باہر ہمارے لیے بہت کچھ اپرچونیٹیز ہیں اور بہت سارے وہاں مواقع موجود ہیں، تو یوں پیسے والے بن جائیں گے تو آسان رہائش ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ جب میں نے یہ نیوز پڑھی ہے، یہ ڈان کی نیوز تھی، اس طرح کی مطلب ایک سمجھے کہ میں نے اس کو تھوڑا اپنی طرف سے بھی کچھ اس میں پلس مائنس کرنے کی کوشش کی ہے اور ایکسپیرینس بیس کے اوپر، تو یہ ڈان نیوز ڈان اخبار کی یہ خبر اس طرح کی انداز پر وہ انہوں نے دی تھی کہ لوگ باہر جانے کے لیے سوچ رہے ہیں، اس میں نوجوان کم عمر کے لڑکے بھی شامل ہیں۔ اچھا اب پچھلے دنوں میرے پاس جو باہر ملک سے خبر تھی، میں خود ایک پاکستان کے باہر ایک ملک میں تھا، تو وہاں سے پھر میرے پاس ایک نیوز یہ آئی کہ جوان لڑکیاں اکیلی الون یہ ٹریول کر رہی ہیں فور روزگار کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، جابس کے لیے جا رہی ہیں۔ تو باقاعدہ مجھے جنہوں نے بتایا، خود ان کے پاس اس طرح کی لڑکیوں نے جاب اپلائی کی ہوئی تھی، جو بالکل اپنے ملک سے گئی تھیں، اکیلی ہیں اور وہاں ان کو اکیلی جاب کرنا ہے، پھر اکیلی کہیں شیئرنگ ویئرنگ میں رہنا ہے۔ अच्छा खुद उनको बड़ी हैरत थी जिनके पास जॉब अप्लाई की गई थी, यार ये जवान लड़कियां आ रही हैं जॉब्स मांग रही हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक रुझान बढ़ रहा है और एक मुल्क से ये जो अफराद हैं ये बाहर अपने ही तौर पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अब आपके साथ मैं एक न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है? ये तो एक पहलू हो गया आप के सामने जो मैंने रखा है कि इस तरह मतलब के बंदा खुद अपने आप को बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है कि मुझे बाहर जाना है। अब दुनिया की जो अमीर कंट्रीज कहलाती हैं, अमीर मुल्क कहलाते हैं, उन अमीर मुल्कों में एक मुल्क का नाम है जिसको जर्मनी कहते हैं ना, मशहूर नाम है, यूरोप का एक कंट्री है जर्मनी। तो जर्मनी और स्कैंडिनेवियन वगैरह ये मतलब एक अमीर मुल्क कहलाते हैं। यूरोप पूरे का पूरा अमीर मुल्क नहीं कहलाता, ये 28, 29, 30 के आसपास वहाँ कंट्रीज हैं यूरोप के अंदर, यूरोपियन यूनियन में फिर कंट्रीज बढ़ जाती हैं, मगर वहाँ पर भी गुर्बत वगैरह के तौर पर भी हैं और बड़े मतलब के ऐसे मुल्क भी हैं जिन्हें अमीर मुल्क नहीं कहा जाता, मगर बाज़ ममालिकों से जिन्हें अमीर मुल्क के तौर पर लिया जाता है। उन्हीं अमीर मुल्क के अंदर एक मुल्क है जिसका नाम है जर्मनी, मशहूर कंट्री है। अब मैं आपके साथ जर्मनी की एक खबर शेयर करने जा रहा हूँ कि ये खबर 22 अक्टूबर 2022 की है। खबर ये है कि जर्मनी में 13.8 मिलियन अफराद, यानी करोड़ों लोग हो गए ना, मतलब 10 लाख का 1 मिलियन है, 13 मिलियन, ऑलमोस्ट समझे कि 14 मिलियन के आसपास ये अफराद बन जाते हैं। तो जर्मनी में 13.8 मिलियन अफराद गुर्बत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये मैंने आपको जर्मनी की खबर शेयर अभी कर रहा हूं, और लिखते हैं कि जर्मनी में हर छठा शख्स ये गुर्बत के खतरे से दो चार है। गैस, बिजली और अशियाए खुराक की बढ़ती हुई कीमतें उस अमीर मुल्क के शहरियों के लिए एक बिल्कुल नए चैलेंज का सबब बन रही हैं। तो ये गुर्बत, अच्छा ये पूरी एक न्यूज़ है, अच्छा सिर्फ एक एक जर्मनी की बात नहीं है, अगर हम दूसरे मुल्क ममालिक की भी बात करते, स्पेशली मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, आफ्टर द कोविड बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके अंदर एक नई बिल्कुल एक फ़ज़ा बनी हुई है। इवन के यूके, यूके कितना मतलब कि एक स्टेब्लिश कंट्री के तौर पर माना जाता है, बरतानिया, वहाँ से भी मतलब महंगाई और रोज़गार और इस तरह के हिसाब से कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। गवर्नमेंट सोशल टॉप पर मतलब के अपने वहाँ के रहने वालों को सपोर्ट करती है एक फलाई रियासत होने के हवाले से, वेलफेयर स्टेट होने की वजह से, लेकिन इश्यूज़ हैं। मैं इन तमाम तर डिस्कशन से जो अभी मैं आपसे अभी कर रहा हूँ, इससे मैं आपको अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो अगर आप ये सोच कर बाहर जाते हैं ना कि जनाब हम मतलब बाहर जाएंगे तो वहाँ रोज़गार मिल जाएगा, तो वहाँ ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ज़िंदगी बड़ी ये हो जाएगी, हर एक के साथ ऐसा नहीं होता, बल्कि शायद मैं अगर कहूं कि मेजोरिटी के साथ ऐसा नहीं होता तो हो सकता है कि मैं गलत ना हो। मैंने यूरोप के कई कंट्रीज में सफ़र किया है, मैं यूके कई दफ़ा गया हूं, इसके अलावा फॉरेस्ट के कई कंट्रीज के अंदर मेरा जाना हुआ है, और भी कई कंट्रीज मेरा जाना हुआ है। आपको अंदाज़ा है कि मेरा मतलब कि ओवरसीज ट्रेवल है, ऐसा नहीं कि ओवरसीज ट्रेवल नहीं। अच्छा मेरा सिर्फ ओवरसीज ट्रेवल है तो हमारी ओवरसीज ट्रेवल सिर्फ होटलिंग और कोई खुदा ना करता कोई पिकनिक पॉइंट पर जाने के लिए मेरा ओवरसीज ट्रेवल नहीं होता। मेरा जो ओवरसीज ट्रेवल होता है यानी आउट ऑफ पाकिस्तान अगर मैं सफ़र करता हूँ तो बेसिकली जो हमारा सफ़र होता है वो दावत इस्लामी के दीनी कामों के ताल्लुक से, पब्लिक से मिलना है, मस्जिद में जाना है, नमाजियों से मिलना है, आम लोगों से मिलना है, पर्सनैलिटीज से मिलना है, बाज़ औक़ात ऑफिशियल्स लोग होते हैं गवर्नमेंट के उनसे भी हमारी मुलाकातें होती हैं। वहाँ का जो इकोनॉमिकली स्ट्रक्चर होता है, वहाँ के लोगों की जो मतलब के रहने के और दीगर चीज़ें होती है वो हम डेफिनेटली डिस्कस करते हैं। आपको तबलीग दीन करनी है और आपको नेकी की दावत देनी है, आपको रिलीजियस एक्टिविटीज़ जब वहाँ करनी है तो डेफिनेटली आपको वहाँ के हालात, वाकियात और लोगों के मिजाज और लोगों के अंदाज और वहाँ के रोज़गार के ताल्लुक से भी किसी हद तक मालूम आपको होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ मालूम रखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है तो जनाब वो नाश्ता तक महंगा हो गया है, लोगों के लिए घर चलाना आसान नहीं है, लोगों के लिए बिजली के बिल पेमेंट करना आसान नहीं है, जिस परसेंटेज के साथ महंगाई बढ़ रही है उस परसेंटेज के साथ आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, लोग एक बड़ी तादाद लोगों की तंग दस्ती का और मतलब के गुर्बत का शिकार हैं और परेशान है डेफिनेटली जो जो बात है। तो ये चीजें हमको मालूम होती हैं, तो इससे आपको खुद नेकी की दावत देने के लिए, तबलीगी करने के लिए और सोशल एक्टिविटीज जो आपकी होती हैं, क्योंकि बंदा सोशली तौर पर भी तो अपने आप को एक्टिव रखता है ना, तो इस तरह और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम सूरत हाल पर बात करें तो जितनी मेरी मालूमात है बहुत बुरे हालात हैं। लिहाजा जो मैसेज में तमाम तर डिस्कशंस के साथ आपको डिलीवर करना चाहता हूं, आपको देना चाहता हूं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो ये है कि आप कहीं जाने के बजाय यहीं रहकर अपनी चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश करें। ये कदरे आसान होगा, मैं आपको बता रहा हूं ये कदरे आसान होगा। जब आप यहां से जाते हैं तो आपकी चूंकि खुद अपनी फाइनेंशियली पोजिशन इतनी अच्छी नहीं होती, तो आप यहां से कर्जा लेते हैं और कर्जा छोटा मोटा कर्जा नहीं होता। एक तो कुछ ट्रेवलिंग बहुत महंगी हो गई है, तो लाखों लाख रुपए का कर्जा लेंगे, कुछ घर की चीजें बेचेंगे, फिर आपका वीजा सही है या नहीं है वो एक अलग बात। देखिए एक तबका वो है जो इस तरह की क्वालिफिकेशन लेता है, स्किल्स को बढ़ाता है, एक जॉब उसकी परमिनेंट होती है, उसके पास बाकायदा जॉब लेटर होता है, हर चीज मतलब के ड्यू प्रोसेस होती है, कानून के मुताबिक होती है, लीगल होती है और ये बहुत सारी चीजें होती है, वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है और उसके ताल्लुक से एक अलग प्रोग्राम है जिसको मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, वो एक अलग प्रोग्राम है उसके ताल्लुक से। वो मैं इंशाल्लाह ऐसे लोगों के साथ भी वो प्रोग्राम कर सकता हूँ जो इस तरह बाहर जा गए हैं, लेकिन इस वक्त जो मैं आपसे दरख्वास्त करने की जो कोशिश कर रहा हूँ सबक काम और खबरों के ताल्लुक से, कि ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाएंगे तो बाहर जाते ही दुनिया मतलब कि आपके लिए आंखें बिछा कर बैठी हुई है और एयरपोर्ट पर ही जनाब आपके पास को बहुत बड़ी गाड़ी लेने के लिए आ जाएगी। नहीं नहीं, मैं पाकिस्तान के बाहर मैंने वो सूरत हाल देखी है और अब भी देख रहा हूँ। मेरे लिए कोई ये मतलब मैं आपको कोई बहुत पुरानी बातें नहीं कर रहा, कहूँ तो ये मतलब कि ये चंद महीनों के अंदर अंदर की बात भी कर रहा हूँ मैं, कि लोग किस तरह मतलब कि सुबह सवेरे अंधेरे में, जबकि फजर का वक्त शुरू हुआ भी नहीं है या होने वाला है, अंधेरे में बसों में बैठकर काम पे जा रहे होते हैं, अंधेरे में वापस आ रहे होते हैं, थके हारे पड़ जाते हैं, बदन टूट रहे होते हैं, उन्होंने अपने खाने खुद पकाने, अपने कपड़े खुद धोने हैं, अपना सामान खुद ही मतलब सारा पैक करना है, क्या जागे क्या सोए, ये गिरे ये पड़े, एक ही कमरे के अंदर 15-15, 20-25 लोग आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं वगैरह वगैरह, अलग कम्युनिटी के लोग हैं, किसी से अंडरस्टैंडिंग है किसी से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई किस मुल्क का है कोई किस मुल्क का है, कोई किस शहर का कोई किस शहर का, कोई किस जबान का कोई किस जबान का है, किसके हालात वाकयात क्या है, कोई किन आदतों को लेकर आया है कोई किन आदतों को लेकर आया है, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आज आप अपने घर में हैं, अपने मुल्क में हैं, अपने शहर में हैं, अपने गांव में है, अपने देहात में है, अपने लोगों में है, आपकी फैमिलीज हैं। रियली मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बात समझने की कोशिश करें। जो स्ट्रगल 12 घंटे 14 घंटे की अगर आपने जो वहां जाकर करनी है और करनी है, ऐसा नहीं है कि वहां जाएंगे और जाते मतलब कि कोई आपको तैयार फल मिल जाएगा। नहीं नहीं, जो 14-15-17 घंटे की मेहनत आपको वहां करनी है, जॉब आपकी 8-10 घंटे की होगी, लेकिन जो आना जाना और फिर घर के अंदर खुद अपने सारे काम खुद करने हैं, ये सारी तकालीफ को अगर आप सोचते हैं तो उससे कम तकलीफ में आप यहाँ खुद को चाहे तो स्टेब्लिश कर सकते हैं। अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है कि किसका रिस्क कहाँ लिखा हुआ है। मैं एक इंटेंशन की, एक नीयत की, एक इरादे की, एक अजम की बात करने की आपसे कोशिश कर रहा हूं, तो प्लीज मेरी बात को समझिए, क्योंकि वहां पर सिर्फ ये नहीं है कि रोजगार के प्रॉब्लम्स हैं या आसान है या मुश्किल है या जो भी है, अखलाकियात किरदार और बहुत सारे इश्यूज जो है ना वो आ जाते हैं, फिर आगे फैमिलीज के इश्यूज आ जाते हैं, बच्चे बड़े होते हैं उनके इश्यूज आ जाते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैं इस वक्त आपसे इनिशियली पहला जो मैंने आपसे टॉपिक शेयर किया है, तो आप देखिए कि एक अमीर मुल्क के ताल्लुक से मैंने कहा हर 6 में से एक आदमी वहां पर परेशान है और मतलब उसके लिए मसाइल हैं, मतलब 14 मिलियन ये कम अमाउंट नहीं होता। बाश मुल्क तो ऐसे जिनमें इतनी पॉपुलेशन भी नहीं होती। मैं सिर्फ उस मुल्क का नहीं कह रहा जहाँ जर्मनी के ने बात की, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। अभी मैं जिस मुल्क से होकर आया हूँ पिछले चंद दिनों पहले, वहाँ टोटल पॉपुलेशन 15 लाख की है, टोटल मुल्क की पॉपुलेशन, मुल्क की आबादी 15 मिलियन, 15 लाख की आबादी। मैं इस वक्त कराची शहर से बात कर रहा हूँ, मेरे कराची शहर का एक इलाका है जिसमें शायद 15 लाख के आसपास पॉपुलेशन होगी, मगर उस पूरे मुल्क की पॉपुलेशन 15 लाख है और मतलब लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं है। उसके बाद मैं एक और मुल्क में गया, तकरीबन 5 घंटे का वहां सफर था, 5.5 घंटे जाने के, 5.5 घंटे आने के, तकरीबन 10-11-12 घंटे तो हमारे सिर्फ ट्रेवलिंग में, नमाज वगैरह भी रास्ते में पढ़नी होती हैं। अब वहां भी गए, वहां भी हमने देखा कि वो मतलब कोई लिविंग स्टैंडर्ड को ऐसा नहीं है, लोग किस तरह जी रहे हैं, किस तरह रह रहे हैं, कुछ ना कुछ इसका अंदाजा हुआ है। तो कहीं जाने के बजाय मेहरबानी करें, यहीं रहें, अपने मुल्क में रहें, इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह की रहमत शामिल रही, तो यहाँ पर आपको अल्लाह अच्छा रोजगार दे, बीवी बच्चों का ख्याल रखें, माँ बाप का ख्याल रखें, सिले रहमी है, रिश्तेदारी है, और फिर रिलीजियस तौर पर भी माशाल्लाह बहुत सारी सहूलियात, बहुत सारी आसानियाँ हमको यहाँ पर मुयस्सर हैं। ये तो चले मेरी पहली न्यूज़ थी। दूसरी न्यूज़ जो मैं आपसे शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, पहले मैं आपको डॉक्टर निज़ाम हैं हमारे माशाल्लाह दावत इस्लामी के मुबल्लिग भी हैं, तो ऑर्थो सर्जन हैं और हड्डियों के सर्जन हैं, अच्छे डॉक्टर हैं माशाल्लाह। पहले मैं आपको डॉक्टर निज़ाम साहब की एक वीडियो दिखाता हूँ, और वो वीडियो किस टॉपिक पर है वो इंशाल्लाह फिर मैं आपसे वो चीज़ शेयर करता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आइए देखते हैं।
आज का जो हमारा मौजू है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। इसको समझने की थोड़ी सी जरूरत है। ऑस्टियोपोरोसिस ये एक ऐसा मर्ज है जो कि ओल्ड एज में होता है, खास तौर पर जो लेडीज हैं, इस्लामी बहनें हैं, तो उनमें ये मर्ज ज्यादा पाया जाता है। और मर्द हजरात जो है वो आप 60 साल 70 साल की उम्र में उनके अंदर भी ये बीमारी होती है। ये असल में हड्डियों का भुरभुरापन भी इसको कहते हैं। इसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं हड्डियों में, उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डी ब्रिटल यानी कमजोर हो जाती है और थोड़ा सी चोट लगने से वो फ्रैक्चर हो जाती है। ज्यादातर ये औरतों में देखा गया है आफ्टर मीनोपॉज जो है वो, क्योंकि औरतों के अंदर जो है वो लेडीज के अंदर एक हार्मोन होता है जो के हड्डियों को मजबूत रखता है, और इस मीनोपॉज के बाद इसके अंदर हार्मोनल जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से हड्डियों में भुरभुरापन शुरू हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, और जैसे ही पेशेंट जो है कोई भी मरीज गिरता है तो उसको फ्रैक्चर हो जाता है। खास तौर पे जैसे लेडीज के अंदर कलाई का फ्रैक्चर है और हिप का फ्रैक्चर है। अच्छा, इसमें जो मसला ज्यादातर यह है कि जो हिप फ्रैक्चर होते हैं यानी कूल्हे की हड्डी का टूट जाना, इसमें काफी मसाइल होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से मरीज जो है वो बिस्तरे पे आ जाता है, और बिस्तरे पे आना जो है इसमें फिर काफी मसाइल होते हैं उसके लिए, और फिर पेशेंट का सर्वाइवल जो है वो कम हो जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे हम जो है वो इस मर्ज से हम मरीज को बचा सकते हैं। कुछ मेडिसिन्स वगैरह होती हैं जिसमें कैल्शियम डाइट के अंदर लेना, विटामिन डी लेना, जो हार्मोन जिसकी डेफिशिएंसी है वो लेना, कुछ ऐसी अद्वियात भी आती हैं जो हड्डियों को मजबूत करती हैं, वो मर्द हो या ख्वातीन हो तो उनको भी हम देते हैं, उससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। दूसरा ये कि जो ओल्ड एज पेशेंट हैं उनको चाहिए कि वो बड़े एहतियात से चलें और स्टिक अपने साथ रखें, और इसमें जो है ना वो चप्पल वगैरह जो पहनते हैं ऐसे स्लिपरी ना हो जिससे वो फिसल जाए, एहतियात रखें। कमरे के अंदर कोई लाइट वगैरह ऑन रखें ताकि वो अंधेरे के अंदर अगर लाइट चली भी जाए तो कोई ऐसा बल्ब जलता रहे ताकि उनको नजर आए, तक गिर ना जाए, गिरने से बचाना है इनको। तो इसमें जो है वो ये एहतियात रखेंगे तो इंशाल्लाह इस तकलीफ से बचा जा सकता है।
तो मेरे प्यारे स्नेह भाइयों, ये अभी आपको जो हमने डॉक्टर निज़ाम साहब की जो खबर बताई है, इससे इस प्रॉब्लम में हर साल हड्डी टूटने के तकरीबन 80 लाख वाकियात रिपोर्ट किए जाते हैं, डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक 80 लाख वाकियात जो इस वक्त आपने सुना। तो इस पर मैं जब ये रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मुझे एक यूँ समझिए कि एक हमदर्दाना मशवरा मैं आप सबको दूंगा कि हमारे घरों में उमूमन बुज़ुर्ग लोग होते हैं जिनकी उम्रें बड़ी होती हैं, तो उन्हें उनके लिए भी आप अच्छा एहतमाम करें, सीढ़ी चढ़ते उतरते वो एहतियात करें। यानी मैं यहाँ पर ख्वाहिश मेरी हो रही है कि मैं आपसे अमीर सुन्नत का अंदाज़ थोड़ा सा शेयर करूँ। अमीर सुन्नत हमारे पीर मुर्शिद की एज इस वक्त तकरीबन 74 ईयर है ना, तो अब मैं इनके जब चढ़ने उतरने चलने के अंदाज़ को देखता हूँ तो मैं ये देख रहा होता हूँ, और ये जब मैंने इसकी ये रिपोर्ट जब मैंने पढ़ी, रिपोर्ट पढ़ते हुए मुझे अमीर सुन्नत का एहतियाती जो ज़िंदगी का जो एहतियात का अंदाज़ है वो मैं मुझे याद आया। तो मैं नाजरीन तक स्पेशली जो बुजुर्ग इस्लामी भाई या इस्लामी बहनें वगैरह जो बड़ी उम्र की हैं, 60+ हैं या इससे ज़्यादा हैं, कम ज़्यादा हैं, मैं उन सब से ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा वो तो एहतियातें आपको करनी है, तो अमीर सुन्नत बड़े मतलब एहतियात के साथ जल्दी नहीं करते। एक इसको कहते हैं तहमुल मिजाजी और तबीयत में ठहराव का पैदा होना, बाज़ों को बड़ी जल्दी होती है। अच्छा, ये बाथरूम में गिर जाने के वाकियात भी हो सकते हैं, पोछा लगाते हैं तो बातों का ज़मीन खुश्क नहीं हो पाती, तो ये वाकियात होने का अंदेशा रहता है। सीढ़ी चढ़ने में, सीढ़ी उतरने में बाज़ों का ये डर लगा रहता है कि कोई अल्लाह ना करे पाँव स्लिप ना हो जाए, क्योंकि इस उम्र में भी खुदा ना खासा अगर हड्डियाँ टूटती हैं तो बड़ी आजमाइश बड़ी तकलीफ हो जाती है। बेहतर है कि कोई घर का फर्द ये मतलब कि इनका साथ दे, चलने में, घर से कमरे से निकलने में, कमरे में जाने में, और अगर कोई नहीं है तो आप खुद अपनी मदद आपके तहत धीमा चलें, सिलो चलें, तेज़ रफ्तारी का इजहार ना करें कि नहीं जरा मैं बहुत यूँ जवान हूँ वगैरह। हम जवान मतलब हम इस उम्र के लोग जवान हैं, जवान तो खैर मैं भी नहीं हूँ, इस उम्र के लोग तो बिल्कुल जवान नहीं होते, तो बुढ़ापा हो जाता है ना, 60 साल तो पूरा बुढ़ापा है। तो आप दरख्वास्त है आपसे कि कोई मतलब माजी को याद करके जना मैं तो ऐसा है, ठीक है आपकी दास्तान और आपके वाकियात अपनी जगह पर है, अल्लाह ईमान सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती दे, लेकिन बड़ी एहतियात के साथ कमरे में जाएं, कमरे से बाहर आएं, लाइट हसबे ज़रूरत, बिला वजह की लाइट जलाना ये दुरुस्त नहीं, हसबे ज़रूरत जिसे ज़रूरत है तो बिल्कुल लाइट जलाएं, रोशनी के साथ आए जाएं और ठोकर से खुद को बचाएं, चढ़ने उतरने से अपने मामले, लिफ्ट वाली अगर बिल्डिंग है तो लिफ्ट में दाखिल होने और लिफ्ट से निकलने इसमें भी एहतियात करें कि बातों का दरवाज़ा बंद हो रहा होता है थोड़ी तो जल्दबाजी हो जाती है, इसमें भी प्रॉब्लम होने का अंदेशा होता है। अच्छा, बातों का सड़क पार करने का भी होता है कि भाई रोड क्रॉस करना है, तो उसके लिए भी मेरी तो दरख्वास्त ये कि किसी से मदद ले ली जाए, क्योंकि अमूमन ऐसे लोग ओवर हेड ब्रिज ये पार करना इनके लिए इतना आसान नहीं होता। हाँ, पाकिस्तान के बाहर मैंने देखा कि ओवरहेड ब्रिज के साथ भी लिफ्टें लगी हुई हैं। जी हाँ, तो वो अब अपने तो लिफ्ट लिफ्ट होती है, यहाँ लिफ्ट रहेगी कितनी। तो अगर सड़क उबूर करनी है, रोड क्रॉस करना है, तो उसके लिए क्या क्या आपने एहतियात करनी है, तो काइंडली इस मामले में ज़रूर भी ज़रूर एहतियात करें। अल्लाह पाक हम सबको ज़िंदगी को अच्छे अंदाज से गुजारने की तौफीक अता फरमाए, कि ये गिरना, हड्डी का टूटना ये दुरुस्त नहीं है। जैसे भी कैल्शियम के बारे में कहा गया, कैल्शियम का इस्तेमाल, जिसमें मैं ही आपसे दरख्वास्त ये करूँगा कि आप अपने कंसर्न डॉक्टर, जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हैं जिनसे आप इलाज कराते हैं, आप किसी भी बीमारी के वक्त दिखाते हैं, उन डॉक्टर साहब से एक बार मशवरा करें, तो इंशाल्लाह वो डॉक्टर आपको हड्डियों को मजबूत करने की कोई मेडिसिन दे सकते हैं या कोई ऐसा आपको गिजाई फार्मूला दे सकते हैं जिससे आपकी सेहत अच्छी रह सकती है। तो इंशाल्लाह इससे ही होगा कि वो हड्डियों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है कोशिश करें गिजाओं के ज़रिए हो, वरना भी इस तरह की कोई मेडिसिन हो जो डॉक्टर के कहने पर ली जाए, तो शायद हो सकता है कि इससे आपको फ़र्क पड़े। एक और न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं कि इतदाल के ताल्लुक से वो न्यूज़ है, आइए देखते हैं वो क्या है।
गैर मुतअद्दिल तर्ज़ हयात कैंसर की बड़ी वजह करार। दुनिया में कैंसर मौत की बड़ी वजूहात में से एक है। हर 6 में से 1 मौत कैंसर की वजह से होती है। आलमी माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि दुनिया भर में 50 साल से कम उम्र अफराद और नौजवानों में कैंसर के फैलाव का बड़ा सबब उनका गैर मुतअद्दिल तर्ज़ हयात भी है। तहकीक के मुताबिक नौजवानों में कैंसर की बीमारी तेज रफ्तारी से फैल रही है, जिसका सबब मोटापा, गैर मुतवाजन प्रोसेस शुदा खुराक, जंक फूड और वर्जिश से दूर जाना है। तिब्बी माहिरीन ने बताया है कि बढ़ती उम्र के साथ कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तमाम तंबाकू नुशी तर्क करने, सेहतमंद वजन बरकरार रखने, मुतवाजन गिजा खाने, धूप लेने, नशे समेत दीगर मंशियात से दूर रहने और वर्जिश से कैंसर के खतरात को कम करने में मदद मिलती है। अपनी तहकीक में मुहक्किकीन ने सिफारिश की है कि नौजवानों में आलमी उफक पर कैंसर की स्क्रीनिंग जामे बुनियाद पर की जाए और उनको इस बात पर शऊर और आगाही दी जाए कि अपना तर्ज हयात तब्दील करें, अपनी जिंदगी में सेहतमंदाना सरगर्मियों समेत जिस्मानी कसरत के मशागिल को फरोग दें और गिजाओं का इंतखाब सोच समझ कर करें।
देखिये, ये एक ऐसा टॉपिक है कि मेरी अपनी नीयत यह है कि मैं इंशाल्लाह इस पर पूरा एक प्रोग्राम करूँगा कैंसर के ताल्लुक से, क्योंकि जो मैंने इस पर स्टडी करने की कोशिश की और जो इसको थोड़ा बहुत पढ़ा है, जिस तरह कैंसर बढ़ रहा है और कैंसर की अकसाम बयान की जा रही है, कैंसर के ताल्लुक से जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, फिर इसके इलाज में जितने प्रॉब्लम्स हैं, और जो एक बार कैंसर हो जाए तो फिर क्या उसका इलाज हो सकता है नहीं हो सकता, यानी कि मेडिकली तौर पर डॉक्टर्स क्या कहते हैं, लेकिन आज जो आपके सामने चीज़ें बयान हुई हैं, काइंडली खुद को कैंसर से बचाने के लिए आप और हम सब एहतमाम करें और अपनी ज़िंदगी में जिस तरह बैलेंस पैदा कर सकते हैं इस तरह बैलेंस पैदा करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस तरह ज़िंदगी हमारी बेहतर होगी, ज़िंदगी संवरेगी। एक बार फिर मैं वो हदीस सुना दूँ कि कवी मोमिन कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा रब को पसंद है। तो कवी मोमिन से यहाँ एक शरह में सेहतमंद मुसलमान सेहत मंद रहें ताकि अपने रब की इबादत कर सकें, अपने रब को राज़ी कर सकें। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अल्लाह पाक दुनिया आखिर की भलाइयाँ नसीब फरमाए। दुआ में याद रखिएगा सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।